वेयरवुल्फ, एक ऐसा शिकारी जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर भेड़िए का होता है। कहते हैं कि वो आम दिनों में इंसान की ही तरह होता है, मगर पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में उसे कुछ हो जाता है। वो इंसानी भेड़िए में तब्दील हो जाता है। वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो कहानियां। प्रस्तुत है सीजन 2 की पहली कहानी शिकारी, और यह है भाग 4, कहानी का अंतिम भाग। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मोहित अग्रवाल। पूर्णिमा की रात को वेयरवुल्फ का पीछा करते करते फॉरेस्ट ऑफिसर विजय दास अपने ही दोस्त ह्यूमन एनाटॉमी प्रोफेसर जितेंद्र राव के घर तक पहुंच गया था। प्रोफेसर के फ्रिज में मिली खून की बोतल और दूसरी कुछ घटनाओं की वजह से अब विजय दास के शक के दायरे में उसका खुद का दोस्त प्रोफेसर जितेंद्र आ चुका था। आज प्रोफेसर ने सरप्राइज के लिए विजय दास को अपने घर बुलाया था, लेकिन प्रोफेसर का सरप्राइज ऐसा था जिसकी विजय ने कल्पना तक नहीं की थी। अब आगे, प्रोफेसर ने विजय दास के सामने एक बोतल रख दी जिसमें लाल रंग का लिक्विड भरा था। यह देखते ही विजय दास अपनी जगह से लगभग उछल पड़ा। यह क्या है? प्रोफेसर ने बड़े शांत लहजे में जवाब दिया। इट्स रेड वाइन, खास तेरे लिए मंगवाई है। विजय दास ने बड़े गौर से बोतल को देखा। देखने में वो रेड वाइन की बोतल ही लग रही थी। प्रोफेसर ने बोतल से वाइन ग्लासेस को भरना शुरू किया, लेकिन विजय को लग रहा था जैसे ग्लासेस में वाइन नहीं खून भरा जा रहा हो। उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसने कहा, यार आज अच्छा नहीं है, फिर कभी बैठते हैं ना। प्रोफेसर ने उसकी तरफ हैरत भरी निगाहों से देखा और फिर हंसने लगा। भाई ये तो क्या कह रहा है, इतनी प्रीमियम क्वालिटी की रेड वाइन को छोड़ना चाहता है। देख, तेरे कहने पर ही मैंने बाहर से मंगवाई है ये। प्रोफेसर ने उसे बॉटल पकड़ा दी। विजय बॉटल को गौर से देखने लगा। तब तक प्रोफेसर ने ग्लास उसे पकड़ा कर अपना ग्लास उसके ग्लास से टकरा दिया। चीयर्स। हाँ चीयर्स। विजय एक अलग ही कश्मकश में था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस ग्लास में रेड वाइन है या कहीं किसी का खून तो नहीं। इसलिए वो ग्लास उठाकर बाहर की तरफ बढ़ चला। आज थोड़ा खुले में पीने का मन है। विजय बाहर गया और उसने अपना ग्लास एक कोने में पौधों के बीच खाली कर दिया। और हाँ, इस बीच ग्लास के लिक्विड का थोड़ा सा सैंपल उसने अपने पास एक प्लास्टिक की थैली में रख लिया। अगले दिन विजय ने पुलिस इंस्पेक्टर से कहकर उस लिक्विड सैंपल की जांच करवाई, लेकिन उस सैंपल में ऐसा कुछ नहीं मिला जिस पर शक किया जा सकता हो। इसके बाद कुछ दिनों विजय की प्रोफेसर से मुलाकात नहीं हो पाई। महीने भर बाद फिर से पूर्णिमा की रात आने वाली थी। बीच में कई बार विजय को ख्याल आया कि वो नाहक ही प्रोफेसर पर शक कर रहा था, लेकिन उसे यह भी पता था कि प्रोफेसर कुछ ना कुछ छिपा रहा है। बस इसी वजह से उसने अपनी प्लानिंग कर ली थी। अगली पूर्णिमा की रात प्लान के मुताबिक प्रोफेसर के कॉलेज से लौटते वक्त विजय उसे अपने साथ अपने घर ले गया। घर पहुंचते ही विजय ने रेड वाइन की बोतल खोल ली। प्रोफेसर ने कहा, ये क्या है? विजय ने जवाब दिया, आज तेरे लिए मेरे पास कुछ स्पेशल है। प्रोफेसर ने घड़ी देखते हुए कहा, यार आज मुझे घर जल्दी जाना है, कुछ काम है। विजय ने ग्लास तैयार करते हुए कहा, काम तो मुझे भी है मगर रात को, उससे पहले एक बोतल तो हम खत्म कर ही सकते हैं। प्रोफेसर ने कुछ नहीं कहा। दोनों ने जाम छलकाने शुरू कर दिए। विजय ने प्रोफेसर से उसकी पहले की जिंदगी के बारे में बात करनी शुरू की। प्रोफेसर ने बताना शुरू किया, लेकिन विजय तो आज खोद खोद कर उसके बारे में जानना चाह रहा था। प्रोफेसर ने हंसते हुए पूछा, आज तू ये क्या बातें लेकर बैठ गया है, मेरे पास्ट के बारे में अचानक से तुझे इतना इंटरेस्ट क्यों जाग गया है? विजय ने जवाब दिया, मत पूछ यार, बस ऐसे ही। जो अपने दोस्त होते हैं उनके बारे में पता तो होना चाहिए ना। प्रोफेसर को विजय का व्यवहार आज कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर उसने अपने बारे में काफी कुछ बताया, पता नहीं सच या झूठ। लेकिन उसने बड़ी तसल्ली से विजय को अपने परिवार के बारे में काफी कुछ बताया। शाम के 6 बज चुके थे। प्रोफेसर ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, यार अब काफी टाइम हो गया है, अब मुझे जाना है। विजय ने बेपरवाही के साथ जवाब दिया, चले जाना यार, तू कौन सा रोज रोज यहां आता है। मगर प्रोफेसर बैठने के मूड में नहीं था। बस यार समझ बात को, मैं लेट हो रहा हूं, मेरा घर पहुंचना जरूरी है। विजय ने हाथ खड़े कर दिए, चल ठीक है, बस 2 मिनट रुक, मैं 1 मिनट में आया। प्रोफेसर के कुछ कहने से पहले ही विजय वहां से उठकर बाहर चला गया। प्रोफेसर बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था, आज उसे वाकई में जल्दी थी। मगर जब 5 मिनट बाद भी विजय नहीं आया तो उसने विजय को आवाज दी, विजय विजय। लेकिन विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। अब प्रोफेसर अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ चल दिया, लेकिन विजय बाहर भी नहीं था। यह आखिर कहां चला गया है? उसने चारों तरफ देखा, अंधेरा छाने लगा था। उसने विजय को फिर से आवाज दी, विजय आई एम गेटिंग लेट, वेयर आर यू। जब विजय ने कोई जवाब नहीं दिया तो आखिरकार वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ चला। प्रोफेसर गाड़ी का दरवाजा खोलने ही वाला था कि विजय की आवाज आई, तू जा रहा है जितेंद्र? प्रोफेसर ने पीछे देखे बगैर ही जवाब दिया, हाँ यार मुझे काफी देर हो गई है। तभी उसे लगा जैसे वहां कोई और भी है। उसने पलट कर देखा, 3 लोग उसे घेर चुके थे। उनमें से एक ने उसके हाथ से गाड़ी की चाबी छीन ली। प्रोफेसर गुस्से से चिल्लाया, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, विजय वेयर आर यू। विजय उसके सामने आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे विजय उन लोगों को जानता था। उसने प्रोफेसर से कहा, जितेंद्र आज तू अपने घर नहीं जा रहा है, तू हमारे साथ चलेगा। प्रोफेसर गुस्से में चाबी छीनने लगा, लेकिन 2 आदमियों ने उसे पकड़ लिया। विजय ने बीच में कहा, आराम से प्रोफेसर जितेंद्र मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप लोग इनसे सही तरीके से पेश आएंगे। प्रोफेसर ने चिल्लाकर कहा, विजय तू क्या कर रहा है, कौन है ये लोग? विजय ने जवाब दिया, प्रोफेसर मैंने कहा आज तुम अपने घर नहीं जा रहे हो, तुम हमारे साथ चलोगे, चलो उस गाड़ी में बैठ जाओ। प्रोफेसर ने गुस्से में कहा, तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे कहीं नहीं ले जा सकते हो, चाबी दो मेरी गाड़ी की। प्रोफेसर ने चाबी छीनने की कोशिश की, लेकिन वो उन 2 लोगों के चंगुल से छूट नहीं सका। विजय ने समझाया, प्रोफेसर ये हम तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। प्रोफेसर ने जोर से चिल्लाकर कहा, मेरी भलाई मैं अच्छी तरह समझता हूं, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तभी एक आदमी ने उसके मुंह पर टेप चिपका दिया। प्रोफेसर के सिर पर नकाब डालकर उसे जबरन दूसरी गाड़ी में बैठा दिया गया। प्रोफेसर ने उनके चंगुल से छूटने की काफी कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। गाड़ी वहां से रवाना हो गई और जल्द ही जंगल में किसी उजाड़ सी इमारत के बाहर जाकर रुक गई। यहां सादा वर्दी में पुलिस इंस्पेक्टर और 2-3 और लोग भी मौजूद थे। प्रोफेसर को गाड़ी से उतारकर एक कुर्सी पर बांध दिया गया। कुर्सी पर बंधा प्रोफेसर जितेंद्र छटपटाकर छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही। आखिरकार वो एकदम शांत हो गया। अब सब लोग पूर्णिमा का पूरा चांद निकलने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद चांद निकल आया। वो लोग कुर्सी के साथ ही प्रोफेसर को खुले आसमान के नीचे लेकर आ गए। चांदनी रात थी। चांद की चांदनी बादलों के बीच से छन छन कर आ रही थी। उन लोगों ने कुर्सी पर बंधे प्रोफेसर के मुंह से नकाब हटाया। प्रोफेसर कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन मुंह पर बंधे टेप की वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। यकायक आसमान साफ हो गया और चांद की रोशनी सीधे वहां गिरने लगी। सभी लोग अब सतर्क हो गए। चांद की रोशनी में कुछ देर के लिए प्रोफेसर शांत सा बैठा रहा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने जोर लगाना शुरू कर दिया, जैसे वो उन रस्सियों को तोड़ देना चाहता हो। विजय उसके कुछ करीब आया और उसके चेहरे पर गौर करने लगा। लग रहा था कि प्रोफेसर की आंखें लाल होने लगी थी, चेहरे की नसें तनने लगी थी। वहां खड़े दूसरे लोगों ने भी एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्हें राज का पता लग गया हो। प्रोफेसर के जोरों से पसीना आ रहा था। इंस्पेक्टर ने विजय से इशारे में पूछा कि आगे क्या करना है, लेकिन विजय ने उसे इंतजार करने के लिए कहा। काफी देर हो गई थी। प्रोफेसर जितेंद्र चांद की रोशनी में था, लेकिन वो अब तक भेड़िए में नहीं बदला था। कुर्सी से बंधा प्रोफेसर सिर के इशारे से विजय से कुछ कहना चाह रहा था। आखिर विजय ने उसके मुंह से टेप हटा दिया। प्रोफेसर ने कहा, तुम गलत आदमी पर शक कर रहे हो। मैं वेयरवुल्फ नहीं हूं। इंस्पेक्टर और विजयदास को भी यही लग रहा था, लेकिन अब उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या करना है। तभी दूर से किसी की चीख सुनाई दी और इंस्पेक्टर के वायरलेस पर मैसेज आया कि इंसानी भेड़िये ने एक और इंसान का कत्ल कर दिया है। यह पता लगते ही इंस्पेक्टर घबरा गया। उसने विजय की तरफ देखा। विजय ने सिर हिलाकर उसे आश्वस्त किया और प्रोफेसर को खोल देने के लिए कहा। अब प्रोफेसर एकदम चुप था। विजय ने कहा, आई एम सॉरी प्रोफेसर, यहां जो कुछ हुआ उसके लिए केवल मैं जिम्मेदार हूं। शायद तू मुझे माफ ना करे, मगर मैंने वो किया जो एक दोस्त होने के नाते मुझे करना चाहिए था। लेकिन प्रोफेसर ने एक शब्द भी नहीं कहा। विजय उसे अपनी गाड़ी में उसके घर छोड़ने चल दिया। पूरे रास्ते प्रोफेसर ने उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखा तक नहीं। विजय काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन प्रोफेसर का व्यवहार देखकर उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। प्रोफेसर का घर आ चुका था। प्रोफेसर गाड़ी से उतरा और अपने घर की तरफ बढ़ चला। उसने पीछे पलटकर विजय की तरफ देखा भी नहीं। विजय को काफी अफसोस हो रहा था। उसने जितेंद्र से कहा, सॉरी यार, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। इस बार जितेंद्र ने पीछे मुड़कर उसे देखा और वापस से अपने घर की तरफ बढ़ चला। जाते हुए उसने अपने आप से कहा, विजयदास, तुम अभी कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं जानते हो तुम लोग। प्रोफेसर अंदर चला गया और उसने हमेशा की तरह अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद कर उन पर पर्दे लगा दिए। विजय भी थोड़ी देर में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद प्रोफेसर ने टीवी ऑन कर न्यूज चैनल लगा दिया। टीवी पर खबर आ रही थी कि इंसानी भेड़िए वेयरवुल्फ को पुलिस ने मार गिराया है। प्रोफेसर ने टीवी बंद कर दिया। इसके बाद उसने अपने घर के बेसमेंट में फ्रिज का दरवाजा खोला। फ्रिज में खून से भरी 8-10 बोतलें रखी थी। प्रोफेसर ने उन बोतलों को टेबल पर रख दिया। अब उसने फर्श के एक कोने से एक पत्थर को हटाया। पत्थर हटाते ही वहां सीढ़ियां नजर आने लगी। उसने नीचे झुककर आवाज दी, भाई। कुछ देर में ही नीचे से किसी के सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आने लगी और एक इंसानी भेड़िए जैसा शख्स निकलकर ऊपर आ गया। गुर्राती आवाज में उसने पूछा, आज इतनी देर कैसे हो गई है? प्रोफेसर ने ठंडा सा जवाब दिया, यहां के लोगों को हम पर शक होने लगा है, हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इसके बाद प्रोफेसर ने एक चांदी के चाकू से अपनी हथेली को चीरना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे चाकू से उसका शरीर जल रहा था, लेकिन उसने दर्द बर्दाश्त कर लिया। उसने अपने खून की बूंदों को उन बोतलों पर गिराया। अब इंसानी भेड़िए ने भी चाकू उठाकर अपनी हथेली को चीरना शुरू कर दिया। चांदी के चाकू से उसकी चमड़ी जलने लगी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो दर्द से कराहने लगा। प्रोफेसर ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। लगा जैसे इंसानी भेड़िए का दर्द मिट गया हो। उसने भी अपने खून की बूंदें बोतलों पर गिरा दी। प्रोफेसर ने इंसानी भेड़िए से कहा, भाई, बरसों से हमने इंसानी खून से दूरी बनाए रखी है, बस कुछ साल और फिर तुम भी वापस इंसान बन जाओगे। इंसानी भेड़िए ने कहा, मगर ये जानवरों का खून हमें हमेशा के लिए जिंदा नहीं रखेगा। प्रोफेसर ने प्यार से उसे समझाया, हां, हमारी उम्र बढ़ने लगेगी, हम भी बूढ़े होने लगेंगे। इंसानी भेड़िए ने कहा, फिर तो हम मर भी सकते हैं। प्रोफेसर ने जवाब दिया, हाँ हम कुदरती तौर पर बूढ़े होकर मर सकते हैं। इंसानी भेड़िया ने फिर से पूछा, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्रोफेसर ने जवाब दिया, भाई इस धरती पर इंसान होना एक बहुत बड़ा वरदान है। वो मर तो सकता है, लेकिन उससे पहले वो यहां काफी कुछ देखता है, सहता है, वो रिश्ते बनाता है, लोगों की परवाह करता है। अपना पेट भरने से भी ज्यादा उसके पास करने के लिए काफी कुछ होता है। अपने दोस्तों के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। अब इंसान बनने के लिए हमें कुछ तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी। इंसानी भेड़िया पता नहीं उसकी बात समझ सका था या नहीं, लेकिन उसने अपना हाथ अपने भाई के हाथ पर रख दिया। प्रोफेसर भरोसे के साथ उसकी तरफ देखने लगा। अगले दिन से प्रोफेसर की जिंदगी वापस उसी तरह शुरू हो गई। विजयदास ने उससे माफी मांगने की काफी कोशिशें की, लेकिन प्रोफेसर ने उससे कोई बात नहीं की। बीच में विजय को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। जब वो वापस लौट कर आया तो उसे पता लगा कि प्रोफेसर किसी दूसरी जगह जा चुका है। उसने कॉलेज से उसके बारे में पता करने की कोशिश की, मगर अब उसका कोई पता नहीं था। और विजय, उसके पास अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं था। असल में प्रोफेसर जितेंद्र को पता था कि विजयदास अपनी जगह गलत नहीं था, मगर उसने उससे कोई बात नहीं की। असल में वो विजय से नाराज नहीं था, मगर वो नहीं चाहता था कि विजय को किसी भी तरह से उसकी सच्चाई की भनक भी लगे, इसलिए उसने उस वक्त चुप्पी साधे रखना ही सही समझा। कुछ दिनों में जिंदगी वापस से ढर्रे पर लौट आई थी, लेकिन सब कुछ वैसे तो नहीं होता जैसा हम सोचा करते हैं। 3 महीने बाद पूर्णिमा की रात, वेयरवुल्फ का डर कस्बे के लोगों के दिलो दिमाग से गायब हो चुका था। कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां पहाड़ पर एक कॉटेज में छुट्टियां बिता रहे थे। तभी एक जोरदार चीख ने पूरे माहौल को फिर से दहशत से भर दिया। आप सुन रहे थे शिकारी पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग 4, कहानी का अंतिम भाग। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल।